ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी के आगामी बजट से जुड़ी लोगों की अपेक्षाओं और सुझावों के लिए विभिन्न महिला संगठनों से संवाद किया। दिल्ली पुलिस ने शहर में ड्रग और हथियार रैकेट का भंडाफोड़ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव विविधता के अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार के बारे में बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित किया। कहा, सरकार ने लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार के साथ बुनियादी ढांचे और निवेश को एक समान प्राथमिकता दी। और सरकार ने सोनप्रयाग से केदारनाथ रोपवे के विकास को मंजूरी दी। रोपवे की लंबाई 12.9 किलोमीटर होगी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी के आगामी बजट से जुड़ी लोगों की अपेक्षाओं और सुझावों के लिए विभिन्न महिला संगठनों से संवाद किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने बताया कि संवाद के दौरान महिलाओं के सशक्तिकरण और कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श हुआ। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि इस सार्थक चर्चा में मिले सुझावों को बजट के प्रारूप में शामिल करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में शिक्षकों और शिक्षाविदों के साथ आज संवाद कर शहर की शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव मांगे। इसके बाद मीडिया से बातचीत में श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि ये चर्चा काफी सकारात्मक और सार्थक रही। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार राजधानी दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को देश में सबसे बेहतर शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
डबल इंजन की सरकार दिल्ली में भी जो ये एजुकेशन सिस्टम है, जो ये एक बड़ा गैप है प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल्स के बीच में, हमारा ये विचार है कि ये स्कूल हमारे दिल्ली के हाथ पकड़े और हम इनका हाथ पकड़े, मिल करके दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था ऐसी की जाए जो देश में सर्वोत्तम हो, जो देश की राजधानी के स्तर की हो।
दिल्ली पुलिस ने शहर में ड्रग और हथियार रैकेट का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई में एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से 461 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1,10,00,000 रुपए होने का अनुमान है। पुलिस ने बताया कि इसके अलावा आरोपी के पास एक 9 mm पिस्तौल भी बरामद की गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि सरकार आगामी विधानसभा सत्र के दौरान विकसित दिल्ली का बजट पेश करेगी। मीडिया से बातचीत में श्री सूद ने कहा कि ये बजट विकसित दिल्ली का सपना पूरा करने वाला बजट होगा।
जनता का विकसित दिल्ली का बजट, यानी विकसित दिल्ली का सपना देखने वाली जनता का बजट, उस जनता का बजट जो नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम ताल मिलाते हुए, जिसने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सातों सीट हमें दी, जिसने नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, उनके चेहरे पर, उनके काम पर हमें 48 सीट दी है, उनके विकसित भारत की विकसित राजधानी कैसी होनी चाहिए, उसका बजट बनने के लिए ये प्रयास शुरू हुए।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भलसवा लैंडफिल साइट पर कचरे की बायोमाइनिंग कर प्राप्त हुई 5 एकड़ भूमि पर बांस के पौधे लगाकर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि अगले 1.5 महीने में यहां पर 54,000 बांस के पौधे लगाए जाएंगे। श्री सक्सेना ने कहा कि बांस 30% अधिक ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है और लैंडफिल साइट पर लगे ये पौधे शहर के प्रदूषण को समाप्त करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि डबल इंजन सरकार कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार तेजी से मिशन मोड में कार्य करते हुए दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाएगी। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज संजय वन में एक ऐतिहासिक किले की प्राचीर, कुएं के पुनरुद्धार और रॉक कैफे का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि 13वीं-14वीं शताब्दी में बनी ये धरोहर न केवल दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा है, बल्कि शहर की सांस्कृतिक पहचान का भी प्रतीक है। श्री सक्सेना ने कहा कि ये संरचना जो सदियों तक गाद में दबी रही और जिसके केवल कुछ जर्जर बुर्ज ही दिखाई देते थे, अब अपनी पुरानी भव्यता में पुनर्जीवित हो चुकी है। उन्होंने सभी वासियों से इस अमूल्य विरासत को सहेजने, स्वच्छ और संरक्षित रखने की अपील की, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी शहर के इतिहास से रूबरू हो सकें। साहित्य अकादमी 7 से 12 मार्च तक नई दिल्ली के रविंद्र भवन में वार्षिक साहित्योत्सव का आयोजन करेगी। ये एशिया का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव होगा। संवाददाताओं से बातचीत में अकादमी के सचिव डॉ. के श्रीनिवास राव ने बताया कि 6 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। देश के विभिन्न हिस्सों से 50 से अधिक भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 700 से अधिक लेखक इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस समारोह में लगभग 120 सत्र होंगे और समारोह का विषय है भारतीय साहित्यिक परंपराएं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया। ये महोत्सव विभिन्न क्षेत्रों की अनूठी परंपराओं को प्रदर्शित करके राष्ट्र की विविध विरासत का जश्न मनाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस महोत्सव का उद्देश्य राष्ट्रपति भवन को सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र बनाना है, जिससे भारत की जीवंत विरासत को उसके नागरिकों के करीब लाया जा सके।
इस महोत्सव में 500 से अधिक कारीगर और बुनकर पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघा का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें कांजीवरम और कसावू साड़ियां, मैसूर सिल्क, पीतल और लकड़ी के शिल्प शामिल हैं। इस वर्ष यह महोत्सव दक्षिण भारत पर केंद्रित है, जिसमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 5 राज्यों के साथ साथ संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप और पुडुचेरी भी शामिल हैं। महोत्सव में 400 से अधिक कलाकार दक्षिण भारत की संस्कृति को अपने लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और संगीत की प्रस्तुति से जीवंत कर रहे हैं। यह महोत्सव आम जनता के लिए कल से 9 मार्च तक खुला रहेगा। आगंतुक सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक इस महोत्सव का आनंद ले सकते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए रईसुद्दीन के साथ अनुपम मिश्र।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने निवेश में बुनियादी ढांचे और उद्योगों को जितनी प्राथमिकता दी है, उतनी ही प्राथमिकता लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार को भी दी है। रोजगार पर बजट के बाद एक वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि लोगों में निवेश का लक्ष्य 3 स्तंभों, शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य सेवा पर टिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक टेलीमेडिसिन की सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। डे केयर, कैंसर केंद्रों और डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे के माध्यम से सरकार गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को अंतिम छोर तक ले जाना चाहती है। उन्होंने कहा कि वेबिनार के विषय लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश विकसित भारत के रोडमैप को परिभाषित करते हैं।
इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन, ये एक ऐसी थीम है जो विकसित भारत के रोडमैप को डिफाइन करती है। इस साल के बजट में आपको इसका प्रभाव भी बहुत बड़े स्केल पर दिख रहा है। इसलिए यह बजट भारत के भविष्य का ब्लूप्रिंट बनकर सामने आया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई फैसले लिए गए हैं, जिससे भारत एआई क्षमताओं को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय वृहद भाषा मॉडल स्थापित करेगा।
हिल इन इंडिया और लैंड ऑफ द बुद्धा इस अभियान के माध्यम से दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित किया जा रहा है। भारत एक ग्लोबल स्तर का टूरिज्म एंड वेलनेस हब बने, इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।
पंचायती राज मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन में पंचायती राज मंत्रालय की आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल का शुभारंभ करते हुए उन्होंने पंचायतों की कार्यशैली पर प्रकाश डाला और सभी पंचायत प्रतिनिधियों से अपने काम में मानकों का पालन करने का आग्रह किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सरकार ने विकास की अवधारणा को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि अब महिलाओं के नेतृत्व में विकास सरकार का मुख्य फोकस है, जो वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देगा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए गोवा में जिला पंचायत सदस्य अनीता थोरा ने पंचायतों को समर्थन देने के लिए सरकार की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज की कार्यशाला सभी पंचायत सदस्यों का मार्गदर्शन करेगी।
मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत की तरफ से ये जो एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया, उसकी वजह से एक बूस्ट मिल जाएगा। जो महिलाएं वो चेयर पे बैठी है, एक सपोर्ट मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से।
बिहार की एक प्रतिभागी प्रज्ञा कुमारी ने कहा कि वे अपनी पंचायत में महिलाओं को वित्तीय प्रशिक्षण दे रही हैं और इसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र की महिलाएं वित्तीय रूप से साक्षर हो गई हैं।
महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए उस पे हमने विशेष रूप से काम किया है और महिलाओं को ट्रेनिंग दिलवाया है कि जिससे वो अपना इकोनॉमिकल स्टेटस जो है वो बेहतर कर सकें। कमर्शियल अकाउंटेंसी का जो काम होता है हमारे बिहार में पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हुआ है और महिलाएं अपना खुद का बजट खुद बनाती हैं और खुद काम भी करती हैं।
विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने दिन भर चले इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 23 वर्षीय एक महिला नक्सली को गिरफ्तार किया है जो दिल्ली में पहचान बदलकर रह रही थी। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले की रहने वाली है और वह झारखंड के सोनुआ थाने में दर्ज एक मामले में वांछित थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी असली पहचान छुपाकर दिल्ली में रह रही थी और शहर में घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी। आरोपी पर सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। सरकार ने सोनप्रयाग से केदारनाथ रोपवे के विकास को मंजूरी दे दी है जिसकी लंबाई 12.9 किलोमीटर होगी। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 4,000 करोड़ रुपए से अधिक होगी। उन्होंने कहा कि इस रोपवे से तीर्थ यात्रियों की यात्रा का समय 8 से 9 घंटे से घटकर 36 मिनट रह जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से दिव्यांगजनों और बुजुर्गों को काफी सहायता मिलेगी।
8 to 9 hours की जो जर्नी है that will become a journey of 36 minutes. श्रद्धालुओं को तो बेनिफिट होगा ही होगा और साथ ही साथ बहुत बड़ा जो लोकल बिजनेसेस हैं उनको बेनिफिट होगा और जो दिव्यांगजन हैं और जो हमारे बुजुर्ग साथी हैं उन सब के लिए भी एक बहुत बड़ी मेजर बेनिफिट इससे निकलेगा।
मंत्री ने यह भी बताया कि हेमकुंड साहिब रोपवे का भी विकास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 2,730 करोड़ रुपए होगी। उन्होंने बताया कि रोपवे की लंबाई 12.4 किलोमीटर होगी। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने पशुधन स्वास्थ्य और रोग निवारण के लिए 3,880 करोड़ रुपए की लागत से निर्णय किए हैं। उन्होंने कहा कि टीकाकरण इस कार्यक्रम का प्रमुख क्षेत्र होगा। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पशु औषधि के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता वाली और सस्ती जेनेरिक पशु चिकित्सा दवा उपलब्ध कराई जाएगी।
पशु औषधि योजना बनाई गई है जिससे कि क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन दिए जा सके और उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो किसान समृद्धि केंद्र बने और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनके माध्यम से पशु औषधि का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट के फैसलों की सराहना की है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने आज उत्तराखंड में 2 नए रोपवे को मंजूरी देकर 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक इन रोपवे के निर्माण से न केवल श्रद्धालुओं का समय बचेगा बल्कि उनकी यात्रा भी अधिक सुविधाजनक होगी। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में ड्रॉ ऑफ लॉट्स के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर कोटे के अंतर्गत नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में दाखिले के लिए आज लॉटरी निकाली गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी के आगामी बजट से जुड़ी लोगों की अपेक्षाओं और सुझावों के लिए विभिन्न महिला संगठनों से संवाद किया। दिल्ली पुलिस ने शहर में ड्रग और हथियार रैकेट का भंडाफोड़ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव विविधता के अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार के बारे में बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित किया। कहा सरकार ने लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार के साथ साथ बुनियादी ढांचे और निवेश को एक समान प्राथमिकता दी और सरकार ने सोनप्रयाग से केदारनाथ रोपवे के विकास को मंजूरी दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।